कि सौम का वैसे तो मतलब है बचना, अब वो किसी भी चीज से बचना हो, लेकिन सौम को जब इस्तिलाह के अंदर देखते हैं तो कुछ खास चीजें हैं कि जिनकी फहरिस्त हमारे सामने पेश की जाती है कि साहब इन 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 चीज़ों से अपने आप को बचाना है, और ये बचाना है तो कब बचाना है, कि माह रमज़ान में बचाना है, पूरे माह रमज़ान के अंदर बचाना है, सुबह से लेकर मगरिब तक बचाना है, और सबसे अहम सवाल कि क्यों बचाना है, वो जवाब आता है क़ुर्बतन इलल्लाह। ये सारा काम इसलिए करना है क्योंकि खुदा ने हमसे इस बात का तकाजा किया है, हमसे इस काम को मांगा है, इसी को हम ताबीर करते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह से। फिक्र के अंदर क़ुर्बतन इलल्लाह का मतलब ही ये होता है कि हुक्म खुदा को पूरा करने के लिए किसी काम को अंजाम देना। यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र का सामान है, इसलिए कि उनके जहन में ये बात आती है और बिल्कुल हक है ये बात आना कि ये काम हम क्यों अंजाम दें। शरीयत के अंदर इबादत में ख़ास तौर पर जितने क्यों हैं उनका जवाब उस इबादत के अंदर दिया गया है कि अगर नीयत ये नहीं है तो ये इबादत बनती ही नहीं है। ये इबादत इबादत उस वक्त बनती है जब इस क्यों को आप समझ लें, और वो क्यों क्या है कि जब खालिक को माना है तो उस खुदा को मानने के बाद जिस ज़ात को माना है उस ज़ात की बात को भी मानना शुरू करो। उस ज़ात की बात को अगर मान लिया तो फिर उसके बाद सारे क्यों एड्रेस हो जाते हैं। नमाज क्यों पढ़ें? क़ुर्बतन इलल्लाह। रोज़ा क्यों रखें? क़ुर्बतन इलल्लाह। ज़कात क्यों निकालें? क़ुर्बतन इलल्लाह। जिहाद क्यों करें? क़ुर्बतन इलल्लाह। ये सारे के सारे काम क्यों किए जाएं? इसलिए कि मेरे खुदा ने इस काम का मुझे हुक्म दिया है, लिहाजा इस काम को करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा खालिक अगर मुझसे इस काम के ज़रिए से राज़ी होता है तो मैं इसी काम को अंजाम दूंगा। ये अगर एक इंसान के लिए इबादत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उसके रीज़न के हवाले से आते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो एड्रेस हो जाते हैं। फिर वो दूसरे फवायद जितने भी हैं वो आप गिनते रहिए, वो उसकी हिकमतें हैं, वो उसकी विजडम है, वो उसकी फ़िलासफ़ी है, वो आप करते रहें। कि मिसाल के तौर पर रोज़ा इंसान अगर रखता है तो उसकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा, वो ठीक है, वो हक है, मगर सेहत पर उसके अच्छे असरात वो उसके बाई प्रोडक्ट हैं, वो उसके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से एक आपकी असल सैलरी होती है कुछ आपको बोनस मिल जाता है, तो ये असल नहीं है। असल तो ये है कि मेरा खुदा मुझसे ये चाहता है लिहाजा मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। तय है कि जब परवरदिगार आलम के लिए मैंने कुछ नहीं किया तो उसने इतना कुछ मुझे अता किया है, तो जब उसके कहने पर मैं ये इबादत का तोहफा उसे पेश करूँगा तो वो क्या कुछ मुझे अता नहीं करेगा। वो अपनी जगह पर है कि सेहत में भी बरकत हो जाएगी, रिस्क में भी बरकत हो जाएगी, उम्र में भी बरकत हो जाएगी, और बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो जाएंगे, एक रूहानी सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाएगा, वो सब अपनी जगह पर है। मगर जो बुनियादी बात है वो यही कि चूंकि मेरा खुदा मुझसे ये काम चाहता है लिहाजा मैं इस काम को अंजाम दूंगा। जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो नहजुल बलागा के अंदर भी इस बात को शब्द समझाया कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम, कि इस्लाम नाम है सर तस्लीम खम करने का। या तो पहले तय करो कि खुदा है ही नहीं, अगर ये समझ में आ जाता है कि नहीं तुम खुद ब खुद पैदा हुए हो, तुम्हें किसी ने पैदा नहीं किया, कोई खालिक तुम्हारा नहीं है, कोई मालिक तुम्हारा नहीं है, तो फिर तो ये बहस ही बेकार है। फिर कौन सी इबादत और कैसी इबादत और किस तरह की इबादत, फिर तो ये सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। फिर तो रोज़ा छोड़िए, नमाज भी ख़त्म और पूरा दीन ही ख़त्म। लेकिन अगर एक इंसान वंस वो कन्विंस हो जाए कि खुदा तो है, परवरदिगार तो है, कि जिसने मुझे पैदा तो किया है, तो जब पैदा किया है और मेरे लिए ये चीज़ वाज़े हो जाए कि उस पैदा करने वाले ने मुझसे किसी चीज़ का तकाजा किया है, तो मौला फरमाते हैं कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम। जब तुमने ये समझ लिया कि हाँ वो अल्लाह है, तो फिर इस्लाम नाम ये है कि अपने आप को उसकी बारगाह में सरेंडर कर दो, सबमिट करो, जो उसकी मर्जी है उसके आगे अपनी मर्जी को सरेंडर कर दो। मर्जी मौला अज हमें औला, कि जो मौला की मर्जी है वो सबसे औला है, वो सबसे ज़्यादा औलवियत रखती है। तो ये क़ुर्बतन इलल्लाह के जज्बे के तहत अगर इस इबादत को अंजाम दिया जाए तो फिर ये सौम की इबादत मटेरियलाइज होती है और अपना असल रंग हासिल कर पाती है।